أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. تمام درشکوں کو میرا سلام. پیارے دوستوں، ہم اپنے آج کے کاریکرم میں بھی اپنی پچھلی بحث کو ہی آگے بڑھائیں گے، یعنی ہم آج بھی شکیات نماز یا نماز میں ہونے والی شنکاؤں کے بارے میں ہی بات چیت کریں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے کاریکرم میں یہ بتا دیا تھا کہ نماز میں ہونے والی سندیہ یا نماز میں ہونے والی شنکائیں تین پرکار کی ہوتی ہیں. کچھ وہ جو نماز کے انش، نماز کے جز کے بارے میں شنکائیں ہوتی ہیں، جس کو ہم نے آپ کے سامنے پچھلے کاریکرم میں بیان کیا، اور کچھ شنکائیں وہ ہوتی ہیں جو نماز کی رکعت کے بارے میں ہوتی ہیں. آج ہماری بات چیت کا آدھار یہی ہوگا، یعنی ہم آج اپنے کاریکرم میں نماز کی رکعتوں کے بارے میں ہونے والے سندیہ اور شنکاؤں کے بارے میں بات چیت کریں گے، اور اسے سمبندھت مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے. جیسا کہ ہم نے پچھلے کاریکرم میں سنکھپت روپ سے بتایا تھا کہ وہ سندیہ، وہ شنکائیں جو نماز کی رکعتوں سے سمبندھت ہوتے ہیں، وہ سندیہ وہ شنکائیں دو پرکار کی ہو سکتی ہیں. کچھ سندیہ اور کچھ شنکائیں وہ ہیں جو نماز کو باطل کر دیتی ہیں، اور کچھ سندیہ اور کچھ شنکائیں وہ ہیں جو نماز کو باطل نہیں کرتی ہیں، اور وہ شنکائیں یا وہ شک جو نماز کو باطل نہیں کرتے ہیں وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں. ایک شک اور سندیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں اسلام نے، ہمارے فقہا اور مجتہدین نے کچھ وشیش اصول بیان کیے ہیں جس کے آدھار پر ان شنکاؤں کا نوارن کیا جائے گا، اور کچھ شنکائیں وہ ہوتی ہیں جن کے اوپر کہا یہ گیا ہے دھیان نہیں دینا چاہیے. آج ہماری بات چیت کا آدھار یہی باتیں ہوں گی. تو سب سے پہلی چیز جو نماز کی رکعت کے بارے میں شنکائیں ہوتی ہیں، اس میں ہم بات چیت کریں گے اس بارے میں کہ نماز کی رکعت میں ہونے والے وہ شک جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو ہم آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلا شک جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان دو رکعتی نماز میں نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک کرے تو اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. جیسے اگر انسان صبح کی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو یہ شک ہو جائے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں پہلی ہے یا دوسری ہے، تیسری ہے یا چوتھی ہے، یعنی نماز کی رکعت کے بارے میں شک ہوا اور نماز دو رکعتی تھی، تو اس کی نماز باطل ہے. یا مثلا کوئی انسان یاتری تھا، مسافر تھا جس کی نماز قصر تھی، اس کو اپنی نماز میں شک ہو جائے کہ نماز کی کون سی رکعت میں ہے، پہلی ہے یا دوسری ہے، تو اگر اس پرکار کا شک ہوتا ہے نماز کی رکعتوں کے بارے میں اور نماز دو رکعتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے. اور دوسرا شک اور دوسرا سندیہ جو نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو مغرب کی نماز پڑھتے سمے نماز کی رکعتوں کے بارے میں شک ہو کہ اس نے کتنی پڑھی ہیں، پہلی رکعت میں ہے، دوسری میں ہے، تیسری میں، کس رکعت میں ہے، یعنی شک ہو رہا ہے نماز کی رکعتوں کے بارے میں اور نماز پڑھ رہا تھا مغرب کی، تو اگر ایسی صورت ہے، ایسی استھتی ہے، تو اس کی مغرب کی نماز باطل ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. تیسرا شک جو ہماری نماز کو باطل کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کو شک ہو کہ جو میں نماز پڑھوں پہلی رکعت ہے یا اس سے زیادہ ہے، یعنی اگر پہلی اور اس سے زیادہ رکعت کے بارے میں انسان کو شک ہوتا ہے تو اس کی نماز باطل ہوگی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی، چاہے یہ چار رکعتی نماز ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر چار رکعتی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اس بات کا شک ہو گیا ہے کہ میں جو رکعت پڑھ رہا ہوں وہ پہلی یا اس سے آگے کی رکعت ہے، تو ایسی صورت میں، ایسی اوستھا میں اس کی نماز बातिल कही जाएगी और उसको दोबारा नमाज़ पढ़नी होगी। इसके बाद जो शक हमारी नमाज़ को बातिल कर देता है वो ये है कि अगर इंसान को शक हो दो रकत में या उससे ज़्यादा, यानी शक हो रहा है कि हमने दो रकत नमाज़ पढ़ी या हमारी दो से आगे हो गई है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि दूसरे सजदे से सर उठाने से पहले, यानी अगर दूसरे सजदे से सर उठाने से पहले इंसान को ये शक हो कि उसकी नमाज की रकत दूसरी है या उससे ज़्यादा है, तो उसकी नमाज बातिल होगी, उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। तीसरा शक जो हमारी नमाज को बातिल कर देता है, यानी अगर ऐसा शक होता है तो हमारी नमाज बातिल है, हमको दोबारा पढ़नी होगी, वो शक क्या है? वो ये है कि इंसान नमाज पढ़ने खड़ा हुआ, अब उसको यही नहीं पता है कि उसने कितनी रकत पढ़ी है, पहली रकत में है, दूसरी में है, तीसरी में, चौथी में, या इसके आगे किस रकत में है। उसको असलन इस बात का ध्यान ही नहीं है कि कौन सी रकत में था, यानी अगर नमाज की रकतों का पता ना हो नमाज पढ़ते समय तो उसकी नमाज बातिल है, उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। उसके बाद जो शक हमारी नमाज को बातिल कर देता है वो ये है कि अगर इंसान चार रकती नमाज पढ़ रहा है, उसको शक ये हो कि वो दूसरी रकत में है या पाँचवीं रकत में है, या तीसरी रकत में है या छठी रकत में है, या चौथी रकत में और छठी रकत में है, अगर इस प्रकार का शक होता है तो उसकी नमाज बातिल होगी, उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। इसके बाद जो चीज़ कही जा सकती है वो ये है कि अगर इंसान नमाज पढ़ते समय उसको कोई एक शक होता है जो हमारी नमाज को बातिल कर सकता है, जैसे कि हमने ऊपर इतने शक बयान किए कि ये शक, ये संदेह, ये शंकाएँ हमारी नमाज को बातिल कर देती हैं, अगर शक होता है, संदेह होता है, तो वो तुरंत बिला फासला अपनी नमाज को तोड़ नहीं सकता है, बल्कि उसको चाहिए थोड़ी देर ठहरे, ध्यान लगाए, सोचने की कोशिश करे, शायद उसको याद आ जाए। अगर याद आ जाता है तो उसी के अनुसार अपनी नमाज को आगे बढ़ा देगा, अगर फिर भी याद नहीं आता है तब वो अपनी नमाज को तोड़ सकता है, वो छोड़ देगा उस नमाज को, उसके बाद अपनी दूसरी नमाज को, यानी उसी नमाज को दोबारा पढ़ेगा। तो ये वो चीज़ें थीं जो हमने आपके सामने बयान की, और ये वो शंकाएं थीं कि अगर नमाज में पैदा हो जाती हैं तो हमारी नमाज को बातिल कर देती हैं। लेकिन कुछ शंकाएं ऐसी होती हैं जो अगर पैदा हो जाएं तो हमारी नमाज बातिल नहीं होती है, बल्कि हमारे फुकहा ने उसके कुछ ख़ास तरीक़े, विशेष कानून बयान किए हैं जिसके आधार पर उसके ऊपर अमल करके हम अपनी शंकाओं का निवारण कर सकते हैं और हमारी नमाज सही हो जाएगी। वो कौन कौन से हम यहाँ पर आपके सामने अभी बयान कर रहे हैं। अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है और नमाज पढ़ते समय उसको ये शक होता है कि वो दूसरी रकत में है या तीसरी रकत में, नमाज पढ़ते समय हमें यह शक हुआ कि हम जो रकत पढ़ रहे हैं वो दूसरी है या तीसरी है, लेकिन शर्त इस बात की है जिस समय यह शक हुआ उस समय वो अपने दोनों सजदे समाप्त कर चुका था, सजदे समाप्त करने के बाद बैठा था या आगे बढ़ रहा था, बैठा हुआ, यानी सजदे समाप्त करने के बाद यह शक होता है कि हमारी रकत दूसरी है या तीसरी है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि उस इंसान को चाहिए कि वो ये समझे कि उसकी रकत तीसरी है, तीसरी रकत समझ के अपनी नमाज को एक और रकत नमाज पढ़ेगा, यानी अगर दूसरी और तीसरी में शक हुआ तो समझेगा हम तीसरी रकत पढ़ रहे हैं, उसका एक और रकत नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ने के बाद सलाम पढ़ेगा, नमाज को समाप्त कर देगा। अब जब नमाज समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद एक चीज़ बताई है हमारे फुकहा ने कि इसको कैसे, इस नमाज को सही किया जाएगा, जो हमारी शंका के कारण थोड़ी कमी ज़्यादती हो गई नमाज में उसमें क्या किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में हमारे फुकहा ये कहते हैं कि जब नमाज समाप्त हो जाए तो नमाज समाप्त होने के तुरंत बाद उस नमाजी को चाहिए कि एक रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़े या दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। तो ये वो उस समय हुआ जब हमें शंका हो रही थी दो और तीन के बारे में। उसके बाद अगर कोई नमाजी नमाज पढ़ते समय शंका करे, उसको शक इस बात का हो कि नमाज में जो रकत पढ़ रहा है वो दूसरी रकत है या चौथी, शक हो रहा है दूसरी और चौथी रकत के नमाज के बीच में, हमको दूसरी पढ़ रहे हैं या चौथी, इस बात का संदेह हुआ, और शर्त ये है कि जिस समय ये संदेह हो रहा है उस समय वो दोनों सजदे अपने समाप्त कर चुका हो। अगर दोनों सजदे समाप्त करने के बाद नमाजी को ये शक होता है कि जो रकत पढ़ रहा है वो दूसरी है या चौथी, तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि वो अपनी रकत को चौथी समझे और चौथी समझने के साथ साथ अपने तशहुद सलाम पढ़ के नमाज को समाप्त कर दे और उसके बाद दो रकत नमाज एहतियात उसको चाहिए खड़े होकर पढ़े, यानी दो और चार में जब शक हुआ उठ दोनों सजदे समाप्त होने के बाद, तो उसको चाहिए कि दो रकत नमाज एहतियात खड़े होकर पढ़े। ये उस समय हुआ जब हमको दो और चार में शक हो रहा था। उसके बाद अगर हमारे किसी भाई को शक होता है नमाज़ पढ़ते समय कि वो दूसरी रकत में है, तीसरी रकत में है या चौथी रकत में, यानी तीन प्रकार का शक है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि जो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं वो दूसरी है, तीसरी है या चौथी है, तो यहाँ पर कहा यह गया है कि अगर ये शक इंसान को दूसरे सजदे के समाप्ति के बाद होता है, दूसरा सजदा समाप्त हो गया, अब उसको इस बात का संदेह हुआ कि जो हम रकत पढ़ रहे हैं वो दूसरी है, तीसरी है या चौथी है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर कहते हैं कि वो अपनी नमाज को चौथी रकत समझेगा। शक हो रहा है दो, तीन और चार के बीच में, तो वो अपनी नमाज को चौथी रकत समझेगा, चौथी रकत समझ के अपनी नमाज को समाप्त कर देगा और उसके बाद वो उसको चाहिए कि दो रकत नमाज एहतियात खड़े होके और दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। दो, तीन, चार के बीच में शक हुआ, उसको चाहिए चार समझे और चार समझने के बाद दो रकत नमाज एहतियात खड़े होके और दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। उसके बाद जो शक होता है, अगर इंसान को शक होता है तीन और चार के बीच में, यानी नमाज़ पढ़ रहा था उसको शक ये हुआ कि हमें जो रकत है वो तीसरी रकत है या चौथी रकत है, तो अगर ये किसी भी हालत में शक हो, चाहे खड़े हो, रुकू में हो या रुकू के बाद हो या दोनों सजदे के बाद हो, किसी भी हालत में हो, अगर ये शक हो रहा है कि तीसरी और चौथी रकत है, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि उसको चाहिए कि अपनी नमाज को चौथी रकत समझे और चौथी रकत समझने के साथ अपनी नमाज को समाप्त कर दे और नमाज समाप्त करने के बाद एक रकत नमाज एहतियात खड़े होके या दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। अगर तीन और चार में शक हुआ किसी भी अवस्था में, चाहे रुकू से पहले हो, क़याम में हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर शक होता है चार रकत समझे और चार रकत समझने के बाद नमाज समाप्त कर दे, एक रकत नमाज एहतियात खड़े होके या दो रकत नमाज एहतियात बैठ के पढ़े। उसके बाद जो शक होता है, अगर शक हो जाए इंसान को, कोई नमाज पढ़ रहा था उसको शक ये हो कि उसकी रकत जो है वो चौथी है या पाँचवीं है, तो अगर ये शक क़याम की हालत में होती है या दोनों सजदे समाप्त होने के बाद होती है, अगर इस हालत में ऐसा शक होता है तो उसकी नमाज़ बातिल नहीं होगी बल्कि उसको इस कानून पे अमल करना होगा जो कानून अभी हमारे फुकहा बयान कर रहे हैं, वो ये है कि अगर क़याम की हालत में उसको शक हो रहा है कि हमारी नमाज चार रकती है या पाँच रकती है, तो उसको चाहिए कि रुकू किए बिना, यानी अभी खड़ा हुआ था, खड़े होने की हालत में उसको ये शक हुआ कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो हमारी रकत है इस समय, वो चौथी है पाँचवीं, तो यहाँ पर उसको चाहिए रुकू में न जाए, रुकू में जाने से पहले सीधा बैठ जाए, बैठने के बाद वो अपनी नमाज को चार रकत ही समझे और तशहुद और सलाम पढ़ के अपनी नमाज को समाप्त कर दे, उसके बाद वो दो रकत नमाज एहतियात बैठ के या एक रकत नमाज एहतियात खड़े होके पढ़े। तो ये उस समय हुआ जब उसको शक हो रहा था क़याम की हालत में, चार और पाँच रकती नमाज थी और क़याम की हालत में उसको शक हुआ। अब अगर यही शक इंसान को उस समय हुआ हो जब वो दोनों सजदे समाप्त कर चुका है, तो उसकी सिचुएशन क्या होगी, उसकी स्थिति क्या होगी, उसके बारे में मसला क्या है। अगर हमारा शक चार और पाँच के बीच में हो सजदे समाप्त होने के बाद, तो हमारे फुकहा यहाँ पर ये कहते हैं कि वो इंसान को चाहिए कि वो अपनी नमाज को चार रकती समझे, यानी चार और पाँच के बीच में शक हुआ, चार रकती नमाज, अपनी नमाज को समझे कि उसने चौथी रकत पढ़ रहा है, तशहुद और सलाम पढ़े, तशहुद और सलाम पढ़ने के बाद नमाज को समाप्त कर दे और जब नमाज समाप्त हो जाए तो उसके बाद वो दो सजदे सहो कर ले। तो ये वो मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किया, जहाँ पर हमारे संदेह होता है, शंका होती है, लेकिन हमारी नमाज बातिल नहीं है, बल्कि अगर हम इन कानून के अनुसार उन शंकाओं का निवारण करें तो हमारी नमाज सही होगी, जो हमने बताई आपके सामने। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के शंकाएं और शक हो सकते हैं जिसमें हमारी नमाज बातिल नहीं होती है, जिनको हम इसी हिसाब से अगर बयान करें तो ये हो सकता है कि जिस समय इंसान शक कर रहा है, संदेह कर रहा है, उस समय वो ये देखे किस रकत में संदेह हो रहा है, किस रकत में है। अगर वो आगे वाली नमाज की शंका से टूट नहीं रही तो आगे के ऊपर अपनी बिना रखेगा और ये समझेगा कि आगे की नमाज़ पढ़ेगा, यानी अगर चार और पाँच रकत में शक हो रहा है तो वो ये समझेगा हम चौथी पढ़ रहे हैं, और अगर जो है इसी प्रकार अगर कम पे हो रहा है तो कम पे रखेगा। तो ये वो मसाइल थे जो हमने आपके सामने अभी बयान किए। कुछ और मसाइल हो सकते हैं जिसको हम अपने इस प्रोग्राम नहीं बयान करेंगे, बल्कि अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर हम तौज़ील मसाइल या इस प्रकार की किताबों का मुताला करें, उनका अध्ययन करें, तो हमें इन मसाइल का और गहराई से और बेहतर तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इन मसाइल का हमको बेहतर तरीके से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में, शक्यात के बारे में और भी बहुत सारे मसाइल जिसको हम अपने आगे के प्रोग्राम में आपके सामने बयान करते रहेंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।